Jana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Jaya Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Jaya Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Radbihari Radha Radbihari Radhe Jaya Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radhe Jaya Sita Ram Lakshman Bhakta Hanuman Sita Ram Lakshman Bhakta Hanuman নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল জয় জয় প্রভুপাদ 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 জয় জয় গুরুদেব 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 নিতাগর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল জো বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রজ আচার্য অষ্টোত্তর সদয় তিলপৃষ্ঠ কৃষ্ণ কৃপামূর্তি অভয় চরণ অরবিন্দ শ্রী ভক্তিবেদান্ত স্বামি শ্রীল প্রভুপাদ কী নামাচার্য শ্রীল অর্দাস ঠাকুর শ্রী প্রেম শিখো জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ কী জয় শ্রী শ্রী রাধা রাজ বিহারী কী ললিতা বিশাখ সখী কী সীতারাম লক্ষ্মণ ভক্ত হনুমান কী নিতাই গৌর প্রেমানন্দে সবী ভক্ত জয় জয়কার হো হরে কৃষ্ণ সবী ভক্ত জয় জয়কার হো হরে কৃষ্ণ সবী ভক্ত জয় জয়কার হো গুরু ওর গৌরাঙ্গ জয় জয়কার হো হরে কৃষ্ণ তাই গৌর প্রেমানন্দে ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় নারায়ণম নমস্কৃত্যম নরম চৈব নরোত্তমম দেবীম সরস্বতীম ব্যাসম ততো জয়ো মুদীরয়ে নষ্টপ্রায়েষু অভদ্রেষু নিত্যম ভাগবত সেবয়া ভগবতে উত্তম শ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্টিকি নমা পঙ্কজনাভায় নমা পঙ্কজমালিনে নমা পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজাঙ্গ্রে মুখম করোতি বাচালম পঙ্গুম লঙ্ঘ্রয়তে গিরিম যৎকৃপাতমহম বন্দে শ্রীগুরু দীনতারিণম পরমানন্দ মাধবম হরে কৃষ্ণ সর্বপ্রথম আপনি ব্যবস্থাপী অধিকারী কো ধন্যবাদ দেনা চাহতা হুঁ জিনোনে মুঝে অপাত্র হতে হুয়ে ভি ইস ভাগবত কক্ষা কো চর্চা করনে মে আমন্ত্রিত কিয়া হরে কৃষ্ণ ধন্যবাদ তো আজ হম শ্রীমদ ভাগবতম কে চতুর্থ স্কন্দ সে 25ওয়ে অধ্যায় আর শ্লোক ক্রমাঙ্ক 3 পড়েঙ্গে শব্দার্থ প্রাচীন বহিষিম শতহ কর্মসু আসক্ত মানসম নারদ অধ্যাত্মা తత్వజ్ఞ కృపాలో ప్రత్యబోధయ ప్రాచీన్ పరీక్షిం శత కర్మస్వ ఆసక్త మానసం నారదో అధ్యాత్మ తత్వజ్ఞ కృపాలో ప్రత్యబోధయ ప్రాచీన్ బరిషిం క్షత కర్మస్వ ఆసక్త మానసం నారదో అధ్యాత్మ తత్వజ్ఞ కృపాలో ప్రత్యబోధయ ప్రాచీన్ బరిషిం క్షత కర్మస్వ ఆసక్త మానసం నారదో అధ్యాత్మ తత్వజ్ఞ కృపాలో ప్రత్యబోధయ పడియ మాతాజీ శబ్దార్థ ఇస్ ప్రకార్ హై ప్రాచీన్ బర్హిషిం राजा प्राचीन बरीषित को क्षतः हे विदुर कर्मसु सकाम कर्मों में आसक्त रत मानसम चित्त नारदः नारद मुनि ने अध्यात्म अध्यात्म विद्या तत्वज्ञ विचारद सत्य का ज्ञाता कृपालु कृपा करके प्रत्यबोधयत उपदेश दिया. अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा. श्रील प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार है. जब राजकुमार जल के भीतर कठिन तपस्या कर रहे थे तो उनके पिता विभिन्न प्रकार के सकाम कर्म संपन्न कर्म में रत थे करने में रत थे. उसी समय समस्त आध्यात्मिक जीवन के ज्ञाता परम संत नारद ने राजा पर अत्यंत कृपालु होकर उन्हें आध्यात्मिक जीवन के विषय में उपदेश देने का निश्चय किया. अनुवाद के पीछे दोहराएंगे. जब राजकुमार जल के भीतर कठिन तपस्या कर रहे थे तो उनके पिता विभिन्न प्रकार के सकाम कर्म संपन्न करने में रत थे। उसी समय समस्त आध्यात्मिक जीवन के ज्ञाता परम संत नारद ने राजा पर अत्यंत कृपालु होकर उन्हें आध्यात्मिक जीवन के विषय में उपदेश देने का निश्चय किया। तात्पर्य, जैसा कि भगवान चैतन्य के परम भक्त प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ने इंगित किया है, कैवल्य अर्थात ब्रह्म तेज के साथ तादात्म्य एक प्रकार से नरक को जाना है। इसी प्रकार स्वर्गिक जीवन का आनंद उठाने के लिए स्वर्ग जाने की इच्छा भी मायाजाल है। इसका अर्थ यह हुआ कि भक्त कभी भी ज्ञानियों तथा कर्मियों के अंतिम लक्ष्य को कोई महत्व प्रदान नहीं करता। कर्मियों का अंतिम लक्ष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करना है और ज्ञानियों का लक्ष्य ब्रह्म तेज के साथ तदाकार होना है। जैसा कि भगवान चैतन्य ने पुष्टि की है, ज्ञानी सचमुच कर्मियों से श्रेष्ठ है। कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। एक ज्ञानी अर्थात निर्विशेषवादी हजारों सकाम कर्मियों में से श्रेष्ठ होते हैं। अतः भक्त कभी भी कर्म के पथ में प्रविष्ट नहीं होता। जब नारद मुनि ने राजा को सकाम कर्म में व्यस्त देखा तो उन्हें दया आई। इसमें संदेह नहीं कि संसारी कर्मियों की तुलना में यज्ञ संपन्न करके उच्च लोक की आकांक्षा करने वाले श्रेष्ठ हैं। किंतु शुद्ध भक्ति भक्ति में कर्म तथा ज्ञान दोनों ही माया के मोहक गुण माने जाते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांच श्रीरूपां सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गोरत्विषे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयेवच पतितानां पावनोभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। क्षमा चाहता हूँ, मैंने वचनों से आशीर्वाद नहीं लिया तो मैं वचनों से भी चाहता हूँ कि वो भी मुझे आशीर्वाद दे। मैंने केवल मैनेजमेंट से मांगा। तो श्रीमद् भागवतम के इस अध्याय का नाम है राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। तो यह वार्तालाप मैत्रेय ऋषि और विदुर जी के बीच में चल रहा है। तो विदुर जी को मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं, जब राजकुमार जल के भीतर कठिन तपस्या कर रहे थे तो उनके पिता विभिन्न प्रकार के सकाम कर्म संपन्न कर में रत थे। उसी समय समस्त आध्यात्मिक जीवन के ज्ञाता परम संत नारद ने राजा पर अत्यंत कृपालु होकर उन्हें आध्यात्मिक जीवन के विषय में उपदेश देने का निश्चय किया। तो फिर यहां पर दो प्रसंग हमारे सामने हैं, एक है राजकुमार भगवान शिव जी के आदेश के अनुसार उनके द्वारा दिए गए मंत्रों से अपने जीवन में उतार कर इस जल के भीतर 10,000 साल तक तपस्या कर रहे हैं जल के भीतर, और दूसरा है इसी बीच में मैत्रेय बता रहे कि उनके पिता जब पिता के आदेश से भी दस प्रचेता पिता के आदेश को पालन शिरोधार्थ करते हुए वो तपस्या के लिए निकले थे, और उसी बीच राजा भी सकाम कर्म संपन्न करने में रत था। तो यहां पर पहले प्रसंग में कि राजकुमार तपस्या करने निकले, तो इस संसार में सृष्टि के आरंभ से देखा गया है कि जिसे भी कुछ जो भी कुछ प्राप्त करना होता है उसे सर्वप्रथम तपस्या ही आरंभ करनी होती है। जिस प्रकार इस सृष्टि की उत्पत्ति के पहले जब ब्रह्मा जी का भी जन्म हुआ तब उन्हें भी कुछ ज्ञात नहीं था, क्या मैं कौन हूं और मैं कहां से आया। जब उन्हें जन्म हुआ तो इस पता लगाने के लिए कि मैं कहां से आया तो उन्हें 100 साल बीत गए, उनके 100 साल हमारे नहीं, तो उन्हें भी 100 साल ढूंढने के पश्चात उनको एक आवाज सुनाई दी 3 बार, तप तप तप, अर्थात तपस्या करो। तो ब्रह्मा जी ने पुनः 100 साल तपस्या की और फिर बाद में इस सृष्टि की रचना आरंभ हुई, सृष्टि के विभिन्न जीवात्माओं की रचना आरंभ हुई। तो यहां पर भी ये वैदिक प्रणाली रही है कि वैदिक संस्कार रहे कि अपने पुत्र को बाल्यावस्था से ही गुरुकुल में भेजा जाता है गुरु के आश्रम में तपस्या के लिए, वह क्योंकि राजमहलों का जीवन वैभवशाली वैभव संपन्न इंद्रिय सुखों से होता है। तो ऐसे जीवन में हम जीवन का वास्तविक लक्ष्य जो परमोच्च लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं कर सकते, जहां सुविधा ज्यादा होती है वहां आश्रम ज्यादा जहां होता है वहां आलस्य पैदा होता है, और आलस्य अज्ञान ये जीवात्मा के सबसे बड़े शत्रु है। तो यहां पर भी राजा प्राचीन भरिषित अपने पुत्र को उपदेश दिया कि जाके तुम तपस्या करो। तपस्या इस शब्द का अर्थ प्रभुपाद अपने भगवदगीता के तात्पर्यों में बताते हैं कि तप अर्थात जो इंद्रियों के लिए अच्छे नहीं है, जो इंद्रियों के लिए एकदम दुखदारी है कष्टदायक है, पर जो व्यक्ति जानता है कि ये इंद्रिया केवल विनाश की सर्पिनिया है, वो व्यक्ति जानबूझकर इन कठिन रास्तों को अपने जीवन में उतारता है ताकि वो जीवन का परमोच्च लक्ष्य प्राप्त कर सके। परंतु यहां पर राजा ने अपने पुत्रों को विवाह करने के लिए तपस्या करने के लिए कहा था, इसीलिए भेजा था तुम ताकि संतान की उत्पत्ति करो और वंश को आगे बढ़ाओ, इस आदेश को दिया था। तो ऐसा ही आदेश एक भागवतम के चतुर्थ पंचम स्कंद में 5वें अध्याय में ऋषभदेव अपने पुत्रों को भी देते हैं। तो इन दोनों कथाओं में हम देख सकते हैं कि पिता वास्तविक वही है, भागवतम में भी आता है पिता न सस्यात् न जननी न सस्यात् न गुरु न सस्यात्, माता पिता गुरु बनने का उसे ही अधिकार है जो अपने पुत्र को उबार सके इस भवसागर से भक्त बना सके, उन्हें ही माता पिता बनने का अधिकार है, नहीं तो अन्यथा माता पिता नहीं है, कुमाता कुपिता कहा गया उनको। तो ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को भी आदेश देते, श्लोक आता है नाहम देहो देह भाजा अनुलोके कष्टान कारमान हरते विडंग बुझाइए तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धे तस्मात ब्रह्म सौख्यम तुनंतम। वो बोलते हैं हे पुत्रो, इस संसार में इस संसार के समस्त देहदारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त होता है हुई है उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही अहर्निश कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो विष्टाभोजी कुकर सुकर को भी प्राप्त होता कर लेते हैं, बल्कि मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने को तपस्या में लगाए, ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और जब वह इस पद को प्राप्त होता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है जो दिव्य है और कभी भी न अंत होने वाला है। तो सारा संसार आज इंद्रिय सुख भोगों में ही लिप्त है, परंतु प्रभुपाद की कृपा से हमें भी यह दिव्य आदेश मिला है, तपस्या। और इस तपस्या के जीवन को निभाने के लिए हमने अपना सुंदर घर, माता पिता, जो प्रेम, भाई बहन, सब कुछ त्याग कर ये तपस्या का कठिन मार्ग अपनाया है। परंतु इस कलयुग में जो तीन युगों में तपस्या होती थी वनों में जाकर, वो संभव नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद आचार्य जिन्होंने आकर हमें तपस्या है पर लगती इतना कठिन नहीं है, सरल है, जितना वनों में जाकर तपस्या करना कठिन था उतना तो कठिन आचार्यों ने इस कलयुग में हमें नहीं दिया है। तो हम भी यहां पर उपस्थित है आध्यात्मिक जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो इतना सुंदर तपस्या दिया है प्रभुपाद जी ने और सब सुविधा देते हुए दिया है, ऐसा नहीं कि हमें अपने बलबूते पर वो तपस्या करनी है, नहीं, उन आचार्यों ने अपने जीवन को कठिन संघर्ष में डालते हुए ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसी स्थिति अपने हमें दी है कि उसे कोई भी व्यक्ति सरलता से कर सकता है। जिस प्रकार प्रभुपाद ने ये मॉर्निंग प्रोग्राम, वही एकमात्र है, और चार नियमों का पालन, ये केवल कलयुग के लिए तपस्या दिया। प्रभुपाद अभिराम प्रभु उनके शिष्य को एक पत्र लिखते हैं, ऐसे इन चार पत्र मैंने पढ़े, उसमें से एक पत्र जो हमेशा मैं पंढरपुर में जाता हूं तो वहां बिल्कुल भगवान के सामने बड़े बोर्ड पर वो पत्र लिखा हुआ है मराठी हिंदी अक्षरों में, वहां पर लिखा है, प्रभुपाद लिखते हैं कि सुबह प्रातः काल में जल्दी उठिए, स्नान करिए, मंगल आरती को उपस्थित रहिए और एक जगह बैठकर 16 माला का अच्छे स्थिति में जप करिए, श्रीमद् भागवतम के कक्षा को सुनिए और अपनी सेवा करिए। ऐसा इंग्लिश में वीक अप अर्ली मॉर्निंग, टेक बाथ, अटेंड मंगल आरती, ऐसा है लिखा हुआ है। तो उसमें प्रभुपाद एक और सेंटेंस लिखते हैं, यदि जो कोई व्यक्ति इस साधना का पालन करेगा पूरी तरह से, तो उसके जीवन में कभी भी आध्यात्मिक समस्या निर्माण नहीं होगी, कभी भी नहीं। तो इतना सरल तपस्या और भक्तों के संग में रहते हुए और ये सरल हो जाती है, क्योंकि हम सुबह नहीं भी उठना चाहें तभी बाजू वाला या कमांडर आके उठाता है, जग जाइए, है ना, प्रभु जी आते और हमें बोलते जग जाइए। तो देखो कितना सरल और बना दिया है कि भक्तों के बीच में रहते हुए तपस्या करना, कि हमें अपने अंदर, भले ही हम इतने उन्नत नहीं है लेकिन भक्त जो है आगे बढ़े वो हमें आकर उठाते हैं कि प्रभु जी उठ जाइए। और अधिक सरल बनाइए हमारे भक्त, क्योंकि बोलते भगवान कि मेरे से बढ़कर मेरे भक्त दयालु होते हैं, तो ये भक्त की दया है। इस श्लोक में भी वो करुणा का, दया का उल्लेख हुआ है, उससे हम चर्चा करेंगे। तो कहने का तात्पर्य कि तपस्या ही एकमात्र मार्ग है जिससे हम हर प्रकार का उद्देश्य सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हम देखते हैं कि बंबई में भक्तों से ज्यादा तपस्या कर्मी लोग करते हैं, ज्यादा तपस्या, भक्ति के लिए इतना तपस्या नहीं उतना आज कर्म करने के लिए, भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए, साधन जुटाने के लिए है। सुबह जल्दी उठना, वो भी लोग उठते हैं क्योंकि भागदौड़ करना पड़ता है, नौकरी, बंबई की ट्रैफिक में जल्दी पहुंचना चाहिए इसलिए 2 घंटा 1 घंटा पहले निकलते हैं। लोकल ट्रेन में इतनी भीड़ भाड़ में जा सांस लेने के लिए भी दम घुटता है, ऐसी तपस्या करते हुए वो जाते हैं। तो हमारे से भी ज्यादा तप है, हमें तो कितना खुला वातावरण दिया है सुबह अच्छी सांस लेने के लिए, समुन्द्र की हवा आती है, तो इतना सुंदर स्थान हमारे लिए प्रभुपाद ने बना के दिया, तो हमारे से ज्यादा कठिन तपस्या करते हैं। तो मैं इस श्लोक में तपस्या का अर्थ दिया है कि हमें तप करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा तपस्या करके अपने जीवन को सफल करना है। इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद ने प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर का एक वाक्य उद्धृत किया है, कैवल्य नरकायते। तो जिस प्रकार ये पुत्र तो चले गए तपस्या करने, परंतु उनके पिता क्या करने लग गए, सकाम कर्म में लिप्त हो गए। बेटों को बोल दिया तपस्या करो और ये लग गए सकाम कर्मों में। तो यहां पर उल्लेख हुआ है कि सकाम कर्मी चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को उपदेश देते हुए इन सकामकर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त इन चारों का बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं। तो हम मैं क्या कह सकता हूं, हम सीधे चैतन्य महाप्रभु के मुखारविंद से ही सुनते हैं। तो यहां पर चैतन्य महाप्रभु बता रहे, धर्माचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ, कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एकगानी श्रेष्ठ। वो कहते हैं वैदिक ज्ञान के अनुयायियों में से अधिकांश सकाम कर्म की विधि का अनुसरण करते हैं और अच्छे तथा बुरे काम में अंतर करते हैं। ऐसे अनेक अनेक निष्ठावान सकाम कर्मी हैं, में से ऐसा कोई एक हो सकता है जो वास्तव में ज्ञानी हो। फिर आगे कहते हैं कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन मुक्त, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। ऐसे लाखों ज्ञानियों में से कोई एक वास्तव में मुक्त होता है और ऐसे लाखों मुक्त लोगों में कृष्ण का शुद्ध भक्त ढूंढ पाना अत्यंत दुर्लभ है। फिर कहते हैं कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। क्योंकि भगवान कृष्ण का भक्त निष्काम होता है इसीलिए वह शांत होता है। सकाम कर्मी भौतिक भोग चाहते हैं, ज्ञानी मुक्ति चाहते हैं और योगी भौतिक ऐश्वर्य चाहते हैं, अतः वे सभी कामी है और शांत नहीं हो सकते। फिर कहते हैं मुक्तानपि सिद्धानां नारायण परण्यन सुदुर्लभम प्रशांत आत्मा कोटिश्वपि महामुने। हे महामुनि, अज्ञान से मुक्त लाखों पुरुषों में तथा सिद्धि प्राप्त लाखों सिद्धों में से मुश्किल से कोई एक शुद्ध नारायण भक्त होता है। ऐसा ही भक्त पूर्णतया तथा शांत होता है। तो चैतन्य महाप्रभु में यहां पर रूप गोस्वामी को बताते हुए बताया कि सर्वश्रेष्ठ भक्त, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है कृष्ण भक्त जो निष्काम होता है। बाकी सकाम, सकाम जिनकी बहुत सारी कामनाएं होती है। तो यहां पर राजा भौतिक कामनाओं से इस सकाम कर्म में लगा हुआ था। तो सकाम कर्म में लिप्त था। तो परंतु हम देखते हैं कि जो भक्त होते हैं वो अपने स्वयं के लिए जीवन नहीं जीते। वैष्णव जन है तेने कहिए पीर पराई जानी रे। तो भक्त को अर्थात वैष्णव, वैष्णव पर दुखी दुख होता है। तो यहां पर प्राचीन भरेषित इतना महान राजा, सारे सृष्टि का, सारे पृथ्वी का साम्राज्य उसके पास होते हुए भी वो सकार कर्म में लिप्त था। तो नारद मुनि, तो यहां पर तो महान संत कहा गया है, महान संत है जिन्होंने देखा कि ये राजा सकाम कर्म में लिप्त है। तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि क्यों ना इसे जीवन का परमोच्च लक्ष्य प्रदान किया जाए। तो यहां पर देखिए नारद भी, प्राचीन वरिष्ठ राजा भी और उनके बेटे प्रचेता भी, ये दोनों सकाम कर्म में लगे थे। पर तो भगवान के दो बड़े बड़े भक्त, प्रथम शिवजी मिले प्रचेताओं को जिन्होंने उनको उन मार्ग से विमुख किया और भगवान की तरफ। इतना सुंदर रुद्रगुरु इसके पहले अध्याय में गाया गया। और उसके बाद में फिर नारद मुनि, अभी बेटों को तो अभी सर भक्ति के लाइन पे शिवजी ने लाया और अभी उनके पिता को भगवान के और शुद्ध भक्त नारद मुनि ने उपदेश यहां पर दिया। तो हम देखते कि परिवार आश्रम, गृहस्थ आश्रम ऐसा है कि न चाहते हुए व्यक्ति भी उसमें फंसना पड़ता है, न चाहते हुए। ये गृहस्थ आश्रम, गृह अंध में कुपम, भागवतम में पांचवें स्कंद में ही कहते हैं कि गृह अंध में कुपम, ये कुप है, कुआ है, कुआ अंधकार का। तो इस अंधकार में, अंधकार कुएं में कहीं दिखाई नहीं देता है क्योंकि भौतिक इंद्रियों के संसाधन इतनी बड़ी पैमाने पर होते हैं कि व्यक्ति उनसे विमुख हो पाना बहुत मुश्किल होता है। अपने बलबूते पर गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति बहुत ही मुश्किल से छूट पाते हैं। यदि उन्हें जो मुक्त पुरुष है वही आकर उन्हें मार्गदर्शन करे तो वो वास्तव में निकल पाते हैं। तो यही इस राजा के साथ हो रहा है, राजा प्रसिद्ध परीक्षित के साथ यही यहाँ पर हो रहा है। ये राजा, अभी राजा मतलब संपूर्ण राज्य उसका, सारा वैभव उसके पास, एक ताली बजाएगा तो 100 दासियां तैयार है ना। तो इतना तो ऐसा इसमें कौन ना आ सकते हो। आज हम देखते हैं कलयुग में छोटा सा घर है, वन रूम किचन, टू कुछ किचन, और इतना सा छोटे से घर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ व्यक्ति इतना आसक्त हो जाता है, तो इतना बड़ा राज परिवार तो राजा आसक्त होना तो स्वाभाविक ही है। तो प्राचीन वरिष्ठ राजा इतने आसक्त हो गए थे कि उनको उपदेश देने के लिए राजा को सरल उपदेश नहीं दे सके, सीधे एज इट इज उपदेश नहीं दिया, तो उनको एक कहानी बनाकर उपदेश देना पड़ा। राजा पुरंजन की कथा, उन्हीं का कैरेक्टर लेकिन नाम चेंज कर दिया राजा पुरंजन। तो इस प्रकार, क्योंकि बोलते कि जो गृहस्थ होते या क्षत्रिय होते वो सीधे शब्दों से उनको बहुत आघात होता है, तो साधु संत जानते हैं, साधु संत का उद्देश्य नहीं होता कि किसी को लताड़ना ताड़ना या फटकारना, नहीं, उनका उद्देश्य यही होता है कि जीवात्मा के मैं कैसे कल्याण करूं, ये उद्देश्य, ये भावना होती है। और हमारे भक्तों को भी यही होना चाहिए, जिसको आगे सबको ले जाना है, बढ़ाना है, तो हमें भी वही भावना नारद मुनि से सीखनी है, ज्यादातर मुझे। तो राजा को पुनः लक्ष्य पर लाने के लिए नारद मुनि ने सुंदर कथा का वर्णन इस अध्याय में हुआ है, राजा पुरंजन की कथा का, उसी का कैरेक्टर है परंतु नाम चेंज करते हुए। तो राजा यहां बता रहे कि सकाम कर्मी ये इंद्रिय भोग चाहते हैं, और ज्ञानी जो होते हैं वो इंद्रिय भोग तुच्छ मानते हुए कैवल्य में, कैवल्य को प्राप्त होना चाहते हैं या ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि संसार मिथ्या है, माया है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये मायावादियों का एक स्पेशल वर्ड है, शब्द है कि जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो ये ज्ञानियों का लक्ष्य होता है। और योगी विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ कौन, कृष्ण भक्त। कृष्ण भक्त इसलिए श्रेष्ठ होता है क्योंकि उसे ये तीनों विधियों के बारे में जानकारी होती है। ये केवल प्रबोधानंद सरस्वती आप बता रहे कि कैवल्यम नरकायते, इसी 24वें अध्याय के 57वें श्लोक में प्रभुपाद पुनः यही तात्पर्य है यहां पर उल्लेखित करते हैं। 57वें तात्पर्य में प्रबोधानंद सरस्वती का स्टेटमेंट, क्षणार्थपि न तुलये न स्वर्ग न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मुक्तानाम की मुताशीष। तो यहां कहते हैं कि प्रबोधानंद सरस्वती का गीत है, कैवल्य नरक आयते त्रिदश पुरकाश पुष्पायते। ये चैतन्य चंद्रामृत में इसका उल्लेख हुआ है कि कैवल्य अर्थात तेज में, ब्रह्म तेज में, भगवान के तेज में विलीन होना, और तथा त्रिदश पुर देवताओं के निवास स्थान स्वर्ग का द्योतक होता है। तो यह दोनों का उल्लेख होता है कि जो सकाम कर्मी है वो स्वर्ग की गवेषणा करते हुए केवल तुच्छ स्वर्गीय भोग चाहते हैं, और जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं अर्थात ज्ञानी, वो ब्रह्म में भगवान के तेज, भगवान को जानने के तीन तरीके भागवतम के दूसरे स्कंद में शायद है, दूसरे नहीं प्रथम स्कंद में दूसरे अध्याय में, वदंती तत्व विदस्तत्व ज्ञान अद्वैतीयम ब्रह्मेति परमात्मी भगवानेति शब्द है। तो ब्रह्म जो है भगवान का एक स्वरूप है लेकिन वो निराकार ब्रह्म तेज है। तो ये ज्ञानियों का लक्ष्य ब्रह्म में विलीन होना होता है, परंतु कहते हैं कि ब्रह्म विलीन होकर वहां पर आत्मा तो क्रियाशील है, आत्मा तो कोई अक्रियाशील नहीं है, वो हमेशा एक्टिविटी चाहता है और एक्टिविटी करते ही वो आनंद भोग सकता है। तो ब्रह्म में तो कोई शरीर प्राप्त नहीं होता है और बिना शरीर के तो कोई क्रिया नहीं हो सकती है। तो ऐसे जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वो ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं, और ब्रह्म में जाते हैं तो वहां पर कोई आनंद नहीं होने के कारण वो पुनः यहां पर कहते आकाश पुष्प आए थे। तो ब्रह्म में कोई आनंद नहीं होता है तो पुनः वो क्या करते, नीचे आ जाते हैं और फिर सकाम कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। पुनः ही संसार के जैसे मायावादी लोग, आनंद नहीं मिलता तो पुनः अस्पताल, अन्न छत्रालय, ऐसे विभिन्न सामाजिक कार्य को करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कृष्ण भक्त वो जहां कहीं भी रहे, भले उसे नरक भी भेजा जाए, वो चाहे, जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं ना कि यदि मुझे नरक के स्थान में भी रखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भक्त जहां भी जाता है वहां वो एक ही मांगता है कि मां चाहे नरक में रखे या कहीं भी रखे, लेकिन आपका स्मरण हमेशा मुझे होता रहे, है ना, आपका क्षण भर के लिए भी मुझे विस्मरण ना हो, क्योंकि जहां कृष्ण है वहां सब कुछ है। तो कृष्ण भक्त केवल भगवान को चाहता है, जैसे बता रहे कि कल राधेश्याम प्रभु कि भक्तों की दो क्वालिटी होती है, सर्वोत्तम क्वालिटी दो होती है, एक अकिंचनत्वम और दूसरा अनन्य गतित्वम। तो अकिंचन अर्थात किंचन अवस्था मतलब जिसके पास भौतिक संपत्ति नहीं है, अकिंचन अर्थात जिसके पास कृष्ण के अलावा दूसरी कोई संपत्ति है ही नहीं, केवल कृष्ण ही मात्र उसकी एक संपत्ति है। तो कृष्ण को पाने के लिए अकिंचन होना चाहिए और अकिंचन क्वालिटी हमें डेवलप करना चाहिए। और दूसरा अनन्य गतित्वम अर्थात कृष्ण के अलावा दूसरी कोई गति नहीं, ये वास्तविक भक्त का लक्षण है, शुद्ध भक्त का। तो व्यक्ति निष्काम होता है। और इस श्लोक में भी कहते हैं कि जो भक्त होता है वो ना स्वर्ग ना पुनर्भव कुछ भी नहीं चाहता, केवल भगवान की भक्ति चाहता है। तो प्रबोधानंद सरस्वती ने इसे नरक के समान माना है कैवल्य को। तो नारद मुनि यहां पर राजा को इस सकाम कर्म से हटाना चाहते हैं और भगवान की शुद्ध भक्ति में लगाना चाहते हैं। तो यहां पर नारद मुनि इस श्लोक के दूसरे लाइन में दो विशेष क्वालिटी का उल्लेख, विशेष गुणों का उल्लेख नारद मुनि के बारे में किया गया है। एक है अध्यात्म तत्वज्ञ और दूसरा है कृपालु। अध्यात्म तत्वज्ञ अर्थात जो आध्यात्मिक जीवन के ज्ञाता यानी अध्यात्म के पूरी तरह से जानता है, दूसरा शब्द उनके लिए यूज किया जा सकता है महाजन, इसलिए नारद मुनि का नाम भी 12 महाजनों में आता है। जो अध्यात्म को भगवान के आध्यात्मिक ज्ञान को पूरी तरह से जानते हैं, पूरी तरह से, इसलिए उनको महाजन कहा जाता है। तो ये नारद मुनि की क्लैरिटी का उदाहरण हम देख सकते हैं भागवतम के प्रथम स्कंध में, जब वेद व्यास जी ने सारे शास्त्रों की रचना करने के बाद भी वो असंतुष्ट थे। कौन सा ज्ञान नहीं था, सब कुछ ज्ञान प्राप्त था और सारे शास्त्रों की रचना कर दी थी, तभी भी उनको कुछ संतुष्टि नहीं हो रही थी। तो पुनः नारद मुनि वहां पर आते सरस्वती नदी के किनारे बद्रिका धाम में, तो वहां पर वो उनको इसी आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश देते हैं। उन्होंने सारा वर्णन किया केवल सकाम कर्मों को बढ़ाने के लिए, सारे शास्त्रों का कर्मकांड ये इत्यादि का वर्णन किया, परंतु भगवान के शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं किया था। कि भगवान जहां पर है वहां पर सब कुछ है, नहीं तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शून्यायतम जगत सर्व गोविंद विरहे न में, जहां गोविंद नहीं है सारा जगत शून्य के तरह प्रतीत होता है। तो यही वेदव्यास जी के साथ हुआ कि उन्होंने सब कुछ वर्णन किया, सारा ज्ञान वर्णन किया, परंतु स्वयं भगवान के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में कोई भी वर्णन गुणगान नहीं किया, इसलिए वो शोकमग्न थे यानी आनंदित नहीं थे। तब नारद मुनि आकर उनको ताड़ते और उपदेश देते हैं कि तुमने सब कुछ किया परंतु परम नियंता स्वयं भगवान कृष्ण के बारे में कोई वर्णन किया। तब जाके श्रीमद् भागवतम इस महापुराण का उद्घाटन होता है, इसकी निर्मित होती है, तब जाके वेदव्यास जी संतुष्ट होते हैं। तो ये होता है अध्यात्म तत्वज्ञ, जो हर तरीके से जानता है कि मेरे अध्यात्म ज्ञान जो जानता है वो हर तरीके से, हर किसी कोई भी कोई श्रेणी का किसी भी तरह का व्यक्ति हो, चाहे ज्ञानी हो, कर्मी हो, आज के स्तर पर देखा है शास्त्रज्ञ हो, बड़े पढ़े लिखे हो, और कोई जाति धर्म का, उसे वो बदल सकता है। और ये क्वालिटी हम श्रील प्रभुपाद में देखते हैं। प्रभुपाद के सामने अनेकों प्रकार के विद्वान आए, लेकिन प्रभुपाद ने हर एक को परास्त किया, हर एक तरह परास्त तो नहीं किया, परास्त तो किया, लेकिन उनको भगवत भक्ति में भी लाए और उनको भगवत भक्त बनाया। हर देश में घूमे, विश्व के सभी बहुत सारे सातों द्वीपों में प्रभुपाद घूमे, सातों खंडों में घूमे, और सभी ऐसे ऐसे व्यक्ति को भक्त बनाए जो एकदम तुच्छ म्लेच्छ जाति के, ऐसे भक्तों, उनको भी भक्त बना है अनेकानेक ट्रीट इस्तेमाल करके। जैसे गिरिराज महाराज, वो राधेश्याम प्रभु बनते कि उनके रूम में उन्होंने लिखा था कि मैं भगवान बनना चाहता हूं, ऐसा उन्होंने लिखा था। तो ऐसे व्यक्ति जो ज्ञानी कहलाते हैं, जो भगवान है मायावादी, तो ऐसे व्यक्ति को प्रभुपाद ने एक ही क्षण में बदल दिया, एक ही क्षण में। क्योंकि जो महान भक्त होते हैं वो जानते हैं, जीवात्मा के अंदर झाकर देख सकते कि इसकी स्थिति क्या है। तो ये अध्यात्म तत्वज्ञ व्यक्ति का लक्षण है। और दूसरा उदाहरण याद दिया है, कृपालु, करुणा, करुणा का उदाहरण दिया कृपालु। तो नारद मुनि कृपालु के उदाहरण शास्त्रों में भरे पड़े। तो इसी चैतन्य चरितामृत में भी नारद मुनि का ही एक कथा, सुंदर कथा आती है। वही चैतन्य महाप्रभु ही बता रहे सनातन गोस्वामी को कि जो वास्तव में भक्त होता है और कैसे कैसे व्यक्ति को भक्त बना सकता है। तो चैतन्य चरितामृत में रूप गोस्वामी को बताते नारद मृगारी की कथा बताते। टाइम तो कम है, नहीं तो मैं इसी चैतन्य चरितामृत से पढ़ने वाला था। तो शॉर्ट में बताने के लिए, बहुत सुंदर श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु ने इसका वर्णन किया है। तो 10 मिनट है तो हम पढ़ते उसी कथा को। क्योंकि महाप्रभु के इतने सुंदर वाक्य है तो मुझे पढ़ते हुए अच्छा लगा कि क्यों ना हम इसे दोहराएं। क्योंकि मेरे वाक्य से तो भक्ति बढ़ेगी नहीं, लेकिन महाजनों की वाक्यों से हमारी भक्ति जरूर बढ़ सकती है। और चैतन्य महाप्रभु, एक दिन श्री नारद देखी नारायण त्रिवेणी स्नाने प्रयाग करीला गमन। एक बार नारद मुनि भगवान नारायण से वैकुंठ में भेंट करने के बाद गंगा यमुना सरस्वती इन तीनों नदियों के संगम में स्नान करने प्रयाग गए। वनपते देखे मृग आचे भूमे पड़ी, बानविद्ध भग्न पाद करे धड़ पड़ी। जंगल से जाते हुए नारद मुनि ने रास्ते में एक हिरण पड़ा देखा जो एक तीर से बिंधा हुआ था। उसके पाव टूट चुके थे और वह तीव्र पीड़ा के कारण टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था। आरकत दूरे एक देखे न शुकर, तैचे विद्ध भग्न पाद करे धड़ पड़। कुछ ही दूरी पर नारद मुनि ने तीर से बिंधा हुआ एक सुअर देखा। उसके भी पाव टूटे थे और वह पीड़ा से तुड़मुड़ कर रहा था। ऐसे एक शशक देखे आरकत दूरे, जीवेर दुख देखी नारद व्याकुल अंतरे। जब वे आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक खरा अभी पड़ा था। नारद मुनि इन जीवों को इस तरह कष्ट भोगते देखकर हृदय में अत्यधिक दुखी हुए। कत दूरे देखे व्याद कुक्षे वो तो हा, मुग मारी बारे आच बानव झूड़िया। जब नारद मुनि और आगे बढ़े तो उन्होंने एक वृक्ष के पीछे एक शिकारी को देखा। यह शिकारी तीर लिए था और अन्य पशुओं को मारने जा रहा था। श्याम वर्ण रक्त नेत्र महाभयंकर, धनुर्बाण हस्ते ये न यम दंडधर। इस शिकारी का शरीर काला था, उसकी आंखें लाल लाल थी और वह अत्यंत भयाना लग रहा था, मानो यमराज हो जो वहां पर अपने हाथों में धनुष बाण लिए खड़ा हो। पत छाड़ी नारद तार निकट चालील, नारद देखी मृग सब पला ये अगेल। जब नारद मुनि जंगल का मार्ग छोड़कर शिकारी के पास गए तो सारे पशु ने तुरंत उन्हें देखा और वहां से भाग गए। कृद्ध हया व्याद तारे गाली देते चाय, नारद प्रभावे मुखे गाली नहीं आय। जब सारे पशु भाग गए तो शिकारी ने गाली देकर नारद को दंडित करना चाहा, किंतु नारद के समक्ष वह एक भी बुरा शब्द उच्चारित न कर सका। गोसाई पयान पत छाड़ी के ने आईला, तोमा देखी मोर लक्ष्य मृग पलाईला। शिकारी ने नारद मुनि से कहा, हे गोस्वामी, हे महामुनि, आपने मेरे पास आने के लिए जंगल में से होकर जाने वाले सामान्य मार्गों को क्यों छोड़ा? आपको देखते ही मेरे शिकार के सारे पशु भाग गए। नारद कहे पत भूली आई लंग पूछते, मने एक संशय है ताहा खंडाई थे। नारद मुनि ने उत्तर दिया, मार्ग छोड़कर मैं तुम्हारे पास अपना संदेह दूर करने आया हूं। पते ये शुकर अमृग जानी तोमा रह, व्याद कहे यही कह सही तनिश्चय। मैं आश्चर्य में था कि सारे अधमरे सुअर तथा अन्य पशु तुम्हारे हैं। शिकारी ने उत्तर दिया, हाँ आप जो कह रहे हैं वो बात सही है। नारद कहे यदि जीवे मार तुम्हें बान, अर्धमरा कर के न लो परिन। तब नारद मुनि ने पूछा, तुमने इन पशुओं को पूरी तरह से क्यों नहीं मारा? तुमने उनके शरीर में अपने तीर बेंध कर उन्हें अधमरा क्यों रख दिया? व्याद कहे सुन गोसाई मृगारी मोर नाम पितर शिक्षाते आमी करिए छे काम। शिकारी ने उत्तर दिया, हे साधु पुरुष, मेरा नाम मृगारी अर्थात पशुओं का शत्रु है। मेरे पिता ने इन्हें इसी प्रकार मारे जाने की शिक्षा दी है। अर्ध मारा जीव यदि धड़ पड़ करे तब त आनंद मोर बाड़े वे अंतरे। जब मैं अधमरे पशुओं को तड़पते देखता हूँ तो मुझे महान आनंद का अनुभव होता है। नारद कहे एक वस्तु मागी तुम्हार स्थाने, व्याद कहे मृगादि लह यही तुम्हारे मने। तब नारद मुनि ने शिकारी से कहा, मुझे तुमसे एक वस्तु मांगनी है। शिकारी ने उत्तर दिया, आप जो भी पशु या अन्य वस्तु चाहे उसे ले सकते हैं। मृग छाल चाह यदि आई समोर घरे यही चाह तहा दिब मृग व्याघ्राम भरे। यदि आपको मृग छाला चाहिए तो मेरे पास अनेक है, मैं आपको मृग छाला या व्याघ्र की खाल दे सकूंगा। नारद कहे, यह आमी किछु नाही चाही, आर एक दान आमी मागी तोमा चाही। नारद मुनि ने कहा, मैं कोई छाला नहीं चाहता, मैं तुमसे दान में केवल एक वस्तु चाहता हूँ। काली है ते तुम यही मृगादि मारी बा प्रथम यही बे मारी बा अर्थ अर्ध मारा ना करी बा। मैं तुमसे याचना करता हूँ कि आज से आगे तुम पशुओं को पूरी तरह मारोगे और उन्हें अधमरा नहीं छोड़ोगे। व्याद कहे, कीबा दान मागीला हमारे अर्ध मारी ले कीबा है ताबा कह मोरे। शिकारी ने उत्तर दिया, महाशय आप मुझसे ये क्या मांग रहे हैं? इन पड़े हुए अधमरे पशुओं से क्या बुराई है, क्या आप मुझे बतला सकेंगे? नारद कहे, अर्ध मारी ले जीव पायो वेता जीवे दुख दीते छ तुम्हारा ये वे छे अवस्था। नारद मुनि ने उत्तर दिया, यदि तुम पशुओं को अधमरा छोड़ते हो तो तुम जानबूझकर उन्हें पीड़ा पहुंचाते हो, अतः बदले में तुम दुख भोगना होगा। व्याध तुम्हें जीव मार अल्प अपराध तो मार कर्थ दाना दिया मार यही पाप अपार। नारद मुनि ने कहा, हे रे शिकारी, तुम्हारा कार्य पशु का वध करना है, ये तो तुम्हारा अल्प अपराध है, किंतु जब तुम जानबूझकर उन्हें अधमरा छोड़कर व्यर्थ तड़पाते हो तो तुम बहुत भारी पाप करते हो। कथार्थ दिया तुम्हें ये तो मारी ला जीवेर तारा तय छे तो मारी बे जन्म जन्मांतरे। नारद मुनि ने कहा, तुमने जिन पशुओं को मारा है और व्यर्थ ही जिन्हें पीड़ा पहुंचाई है वे एक एक करके अगले जन्म जन्मांतरों में तुम्हें मारते होंगे। नारद संगे व्याधे रमन परसन्न हैल तार वाक्य सुनी मने भय उपजील। इस तरह नारद मुनि की संगति से वह शिकारी अपने पाप कृत्यों के प्रति कुछ कुछ आश्वस्त हो सका, अतः वह अपने अपराधों से कुछ कुछ भयभीत हो उठा। व्याध कहे, बाल्य है ते यही हमारे कर्म के मैंने तारु में मोही पामर अदम। शिकारी ने स्वीकार किया कि वह अपने पाप कर्म के प्रति आश्वस्त है। तब उसने कहा, मुझे बचपन से ही ऐसे पेशे की शिक्षा दी गई है, अब मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मैं किस तरह अपने असीम पाप कर्मों से मुक्त हो सकूंगा। यही पाप आय मोर केमन उपाय निस्तार कर मोरे पोड़ तोमार उपाय। शिकारी ने कहा, महानुभाव मुझे बताइए कि मैं अपने पापी जीवन के कर्म फलों से किस प्रकार छुटकारा पा सकूंगा। अब मैं आपकी शरण में हूँ और आपके चरण कमर पर पड़ता हूँ, कृपया मेरे पाप कर्म के फलों से मेरा उद्धार करे। नारद का यति धर अमारा वचन तबे से करी ते पारी तुम्हारा मोचन। नारद मुनि ने शिकारी को आश्वस्त किया, यदि तुम मेरे उपदेशों को ध्यान से सुनोगे तो मैं तुम्हारे मोक्ष का उपाय ढूंढ निकालूंगा। व्याद कहे, यही कहे सही तत्व करीब। नारद कहे, धनु का भंग तबे से कहीब। तब शिकारी ने कहा, मान्यवर आप तो जो कहते हैं वही करूंगा। नारद ने उनसे तुरंत आदेश दिया, पहले तुम अपना धनुष तोड़ डालो, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। व्याद कहे, धनु का भंगीले वर्ती भी के मने। नारद कहे, आमी अन्न दिवे प्रतिदिन। शिकारी ने उत्तर दिया, यदि मैं अपना धनुष बांध तोड़ता हूँ तो फिर मैं अपना भरण पोषण कैसे करूंगा? नारद मुनि ने उत्तर दिया, चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रतिदिन भोजन दिया करूंगा। धनु का भंगी व्याद तारे चरण पड़ी ल तारा उठा नार उपदेश कैल। नारद मुनि द्वारा आश्वस्त किए जाने पर शिकारी ने अपना धनुष तोड़ डाला, तुरंत ही संत के चरण कमलों पर गिर पड़ा और पूर्ण समर्पण कर दिया। तत्पश्चात नारद मुनि ने अपने हाथ से उसे उठाया और आध्यात्मिक उन्नति का उपदेश दिया। घरे गया ब्राह्मण ने देह यत आछे धन एक एक वर्ष पर ही बाहिर दो दुई जना। तब नारद मुनि ने शिकारी को सलाह दी, तुम घर लौट जाओ और तुम्हारे पास जितना धन है उसे उन शुद्ध ब्राह्मणों में बांट दो जो परम सत्य को जानने वाले हैं। ब्राह्मणों को अपना धन बांटने के बाद तुम तथा तुम्हारी पत्नी दोनों ही अपने पहनने के लिए एक एक वस्त्र लेकर गृह त्याग कर दो। अनुवाद पढ़ता हूँ खाली। नारद मुनि ने कहा तुम अपना घर छोड़कर नदी किनारे जाओ, वहां तुम एक छोटी सी कुटिया बनाओ और उस कुटिया के सामने एक चबूतरे में तुलसी का वृक्ष लगाओ। अपने घर के सामने तुलसी रोपने के बाद नित्य प्रति उस तुलसी वृक्ष की परिक्रमा करना, उस जल देना और निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना। नारद मुनि ने आगे कहा मैं तुम दोनों को नित्य प्रति पर्याप्त भोजन भेज दिया करूंगा जिसे तुम इच्छा अनुसार भोजन कर सकोगे। तत्पश्चात वे तीनों पशु जो अधमरे थे नारद मुनि द्वारा पुनः जीवित कर दिए गए। वे पशु उठकर तेजी से भाग गए। जब शिकारी ने अधमरे पशुओं को भागते देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। तत्पश्चात उसने नारद मुनि को सादर नमस्कार किया और वह अपने घर लौट आया। इसके बाद नारद मुनि अपने गंतव्य को चले गए। वह शिकारी लौटकर अपने गुरु नारद के उपदेशों का अक्षरशः पालन करने लगा। यह खबर सारे गांव में फैल गई, शिकारी वैष्णव हो गया है। सारे ग्रामवासी भिक्षा लेकर उस वैष्णव को देने लगे जो पहले एक शिकारी था। एक दिन तो 10 या 20 लोगों के लिए पर्याप्त भोजन आ गया, किंतु शिकारी तथा उसकी पत्नी ने उतना ही स्वीकार किया जितना वे दोनों खा सकते थे। एक दिन अपने मित्र पर्वत मुनि से बातें करते हुए नारद मुनि ने उसे कहा कि चलो चलकर अपने शिकारी शिष्य को देख आए। जब दोनों ऋषि शिकारी के स्थान के निकट पहुंचे तो शिकारी ने दूर से उन्हें देखे आते देखा। वह शिकारी अस्त व्यस्त ही अपने गुरु की ओर दौड़ पड़ा, किंतु वह पृथ्वी पर गिर पर प्रणाम नहीं कर सका क्योंकि चींटियां पांवों के चारों ओर इधर उधर दौड़ रही थी। चींटियों को देखकर शिकारी ने उन्हें अपने वस्त्र से हटाया, भूमि को इस तरह चींटियों से साफ करके वह नमस्कार करने के लिए दंडवत गिर पड़ा। नारद मुनि ने कहा हे शिकारी, ऐसा आचरण तनिक भी आश्चर्यपूर्ण नहीं है। भक्ति में मनुष्य स्वतः अहिंसक बन जाता है, वह साधु पुरुषों में सर्वोत्तम है। हे शिकारी, तुमने जिन सद्गुणों को यथा अहिंसा को विकसित कर रखा है वह बहुत आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि भगवत व्यक्ति में लगे व्यक्ति कभी भी अन्य को ईर्ष्यावश पीड़ा पहुंचाने की मनोवृत्ति नहीं रखते। तब उस शिकारी ने अपने आंगन में दोनों ऋषियों का स्वागत किया। उसने उनके बैठने के लिए कुशे की चटाई बिछाई दी और बड़ी भक्ति के साथ उनसे बैठने की प्रार्थना की। तब वह जल ले आया और बड़ी ही भक्ति के साथ उसने जल से ऋषि का पाद प्रक्षालन किया। तब पति पत्नी दोनों ने उस जल को पिया और अपने सिरों पर धारण किया। जब उस शिकारी ने अपने गुरु के समक्ष हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया तो उसका शरीर कांपने लगा, नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह चली। भावविभोर होकर वह अपने हाथ उठाकर अपने वस्त्रों को ऊपर नीचे लहराता हुआ नृत्य करने लगा। जब पर्वत मुनि ने शिकारी के भाव में प्रेम के लक्षण को देखा तब वे नारद से बोले निश्चय ही तुम स्पर्श मणि हो। पर्वत मुनि ने कहा हे मित्र नारद, तुम देवताओं में ऋषियों के रूप में धन्य हो, तुम्हारी कृपा से इस शिकारी कैसा निम्न जन्मा व्यक्ति भी तुरंत कृष्ण भक्ति के प्रति अनुरक्त हो सकता है। तो यह है नारद मुनि की कृपा। ऐसे कई उदाहरण है। उसी प्रकार नारद वाल्याकोली जो रत्नाकर थे, बाद में वाल्मीकि ऋषि बने, उनकी भी ऐसी कथा है, वो भी एक शिकारी थे। तो ऐसे कई तुच्छ व्यक्तियों को जो इतने अधम, इनको भी नारद मुनि ने अपनी कृपा करुणा से उबारा। और उसी प्रकार करुणा का नारद मुनि तो बहुत शास्त्र में उन्होंने हमारे सामने स्वयं प्रभुपाद जी है जिन्होंने कैसे कैसे व्यक्तियों को उबारा। तो एक भक्त होता है, उनके 26 क्वालिटियों में, वचनों के 26 गुणों में ये करुणा दया ये गुण है। और एक बोलते प्रभुपाद की नहीं, कंपैशन नामक एक बुक है सत्स्वरूप दास गोस्वामी जी का। मुझे एक बार हेमागिरी प्रभु बता रहे थे जब मैं प्रचार के बारे में उनके पास कुछ बोल रहा था, तो बोले सत्स्वरूप दास गोस्वामी बताते हैं कि प्रचारक को सबसे पहले ये गुण डेवलप करना चाहिए करुणा। यदि उसमें करुणा नहीं होगी तो कभी प्रचार नहीं कर सकता है। करुणा होगी तो भले कितना दुर्गुणी हो, कितना अज्ञानी हो, वो उनके उस गुणों अवगुणों को कभी नहीं देखेगा। बस यही देखेगा कि यह व्यक्ति कितना भवसागर में पड़ा है और कितने दुखों की यातनाओं में अपने आप को कष्ट झेल रहा है, तो तभी वो व्यक्ति दूसरों को प्रचार कर सकता है। तो करुणा यही प्रचार करने का सबसे शक्तिशाली क्वालिटी है। यदि होगी तो हमें दूसरे के प्रति करुणा दया आ सकती है और हम उसे भगवत भक्ति में लगा सकते हैं। तो करुणा एक वैष्णव का गुण है। तो आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे गुरुदेव के आदेश से मुझे भी इतना कठिन आदेश मिला है प्रचार करने का, परंतु मेरे पास तो करुणा है नहीं। भक्तों को पता है कि मैं डांटता रहता हूँ क्लीन स्लिप देते हुए। तो आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें कि वो गुण भी मैं मेरे अंदर विकसित कर पाऊँ। और बस यही आशीर्वाद चाहता हूँ आप सभी वचनों से। और मेरे इस शब्दों को विराम देता हूँ, प्रश्नों के लिए समय नहीं है, एक्चुअली समय हो चुका है। और इतने आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अभी मैं इतना अनुभवी नहीं हूं, तो मैं और किसी को कोई टिप्पणी देना है तो वो जरूर दे सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, मध्य खंड में चैतन्य चेतामृत के मध्य लीला में ये 24वां अध्याय आता है, 19वां अध्याय में आता है, नहीं सॉरी 24वां अध्याय में ये कथा आती है। कथा के बारे में पूछे ना, 24वां अध्याय में। हाँ, मध्य खंड 24वां अध्याय। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ टिप्पणी? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, नितायगौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।